सादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे राम 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 हरे हरे। हे भगवान, मैं या कोई आपके इस दिव्य शरीर की शक्ति को समझ नहीं सकता जो आपने मेरे ऊपर कृपा दिखाई है, और ऐसा लगता है कि आप अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रकट होते हैं। हालांकि मेरा मन भौतिक विषयों से अलग रहता है, फिर भी मैं आपके रूप को नहीं समझ सकता। तो ये कैसे संभव है कि मैं आपके अंदर जो स्वयं के सुख का अनुभव है उसको कैसे जान सकता हूँ? ये ब्रह्मा जी अब ब्रह्मा विमोहन लीला के बाद में पश्चाताप की भावना से भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगते हुए सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं। जब हम आचार्यों के द्वारा दिए गए प्रार्थनाओं को सुनते हैं तो उसे हृदय शुद्ध हो जाता है। प्रहलाद महाराज भी जब भगवान नरसिंहदेव का गुणगान करते हैं तो कहते हैं कि मैं आपका गुणगान करूँगा उस तरीके से जैसे ब्रह्मा जी और पूर्वज आचार्यों ने जैसे किया है। भगवान का गुणगान करना ये कोई कलाकारी की बात नहीं है कि जैसे कोई कल्चरल कोई प्रोग्राम्स में लोग सोचते हैं भगवान के बारे में कुछ बोलेंगे या सुनेंगे। भगवान का गुणगान वही व्यक्ति कर सकता है जो शुद्ध है। उत्तम श्लोक गुणानुवादात, जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है वही भगवान को जान सकता है, और जो भगवान को जानता है वही बोल सकता है। जो जानता ही नहीं है वो क्या बोलेगा? जो व्यक्ति सिर्फ स्पेकुलेशन करे। तो इसलिए भक्ति का मतलब है कि महाजनों के पदचिन्हों में चलना। और जब ऐसे शुद्ध भक्त ब्रह्मा जी जैसे जब भगवान का गुणगान कर रहे हैं तो उसके द्वारा भगवान स्वयं की महिमा को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का तत्व ऐसा है कि वो कोई समझ नहीं सकता। आप कितने भी बड़े विद्वान हो, हम देखते हैं कितने प्रभुपाद रशिया में गए, वहाँ पर एक स्कॉलर से मिले प्रोफेसर कॉटोस्की, प्रोफेसर से बात कर रहे थे, वो गीता पढ़ते हैं भागवत पढ़ते हैं, वो प्रोफेसर हैं उस पर, मतलब सिखाते भी दूसरों को। लेकिन वो सब सिखाने के बाद उनका अंत में कहना है कि मेरे मत में पुनर्जन्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मृत्यु के समय पर्दा बंद हो जाता है और फिर उसके बाद सब खत्म हो जाता है। लेकिन हम समझते हैं पर्दा बंद होता है, लेकिन मृत्यु के बाद अगर भक्त हैं तो भगवान के धाम का पर्दा खुलता है। भक्त के लिए मृत्यु क्या है? भक्त कहता है मृत्यु का मतलब है कि भगवान मुझे दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं। इतने बड़े विद्वान स्कॉलर शास्त्रों को जानने वाले, लेकिन वो समझ नहीं सकते कि पुनर्जन्म होता है, कि कृष्ण क्या है। एक बड़े व्यक्ति जो भारत के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं भारत देश के, वो बोलते थे ऐसे कि कृष्ण मतलब ब्लैक, काला, है ना, राइट, कृष्णा मीन्स ब्लैक। और एक बड़े लीडर भारत के हुए हैं जो कहते हैं कि मेरे मत में कृष्ण नाम के कोई व्यक्ति था ही नहीं। उन्होंने भगवद गीता पर कॉमेंट्री लिखी है और बहुत ज़्यादा अहिंसावाद का प्रचार किया है, और वो ऐसा बोलते हैं। लोग उनको इतना रिस्पेक्ट देते हैं देश में, बोलते हैं ये हमारे देश के पिता हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि कृष्ण नाम के व्यक्ति है ही नहीं। गीता 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 पे लेक्चर दे रहे हैं, अरे कृष्ण है नहीं तो फिर हम आपकी बात कौन सुनने आएगा? कितने होशियार हैं, कृष्ण का नाम यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कई बार लोग डुप्लीकेट बनाते हैं, ओरिजिनल सोनी होता है, सोनी प्रोडक्ट जापान का, वो अच्छा प्रोडक्ट होता है, और लोग जब वो प्रोडक्ट के पैसे नहीं भरना चाहते तो सोनी की जगह कुछ एक अक्षर बदल के फिर वो बोलते हैं ये मेड इन USA उल्लासनगर, है ना। तो लोग खरीद ही करते। तो कृष्ण के पास ओरिजिनल है, अगर कृष्ण सत्य नहीं होते तो कृष्ण का नाम ही क्यों उपयोग करते हैं? वो कृष्ण का ब्रांड नेम यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ब्रांड नेम के साथ क्वालिटी भी आती है, तो वो क्वालिटी के बिना वो ब्रांड नेम को यूज़ करना चाहते हैं। तो कृष्ण मूल है, कृष्ण ओरिजिन है सब ज्ञान के, लेकिन कोई व्यक्ति उनको समझ नहीं सकता। आप चाहे संस्कृत पढ़ लें, संस्कृत व्याकरण सीखने में ही 12 साल लगते हैं, आप पूरा संस्कृत सीख भी लें और आप सब उपनिषद सीख लें, वेद सीख लें, लेकिन भगवान को नहीं समझ सकते, ये पूरा रहस्य है। एक छोटा बच्चा, प्रभुपाद जी बोलते थे जब हिमालय में योगी नाक दबा के प्राणायाम करते हैं और कई वर्ष तपस्या करते हैं वो चीज़ नहीं जान सकते, और वो लोग हम वो चीज़ हम गुलाब जामुन खा के जान सकते हैं ना, प्रसादम लेके। या प्रभु भाई, जैसे छोटी बच्ची श्याम सुंदर प्रभु मालती माता जी की छोटी लड़की थी सरस्वती प्रभु, वो सबको जाकर बोलती कि कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है, और जब कोई जवाब नहीं देता बोलते कृष्ण भगवान है। तो उसका ज्ञान ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका ज्ञान जो है वो परंपरा पर आधारित है। जो ज्ञान ज्ञान वास्तव में बनाया नहीं जाता, ज्ञान रिसर्च नहीं किया जाता। जैसे मैंने मुझे लग रहा है कि ये सत्य है और मैंने अपनी बुद्धि से जान लिया है, फिर 2 साल बाद कोई और व्यक्ति आता है और सिद्ध करता है कि मैं गलत हूँ, और फिर 2 साल बाद कोई और व्यक्ति आता है और सिद्ध करता है कि वो गलत है, तो कौन सही कौन है? रिसर्च, रिसर्च मतलब ढूंढ रहे हैं, फिर रिसर्च रिसर्च बार बार ढूंढते रहते हैं। इनफैक्ट रिसर्च का मतलब ही है, आपको रिसर्च की थीसिस अगर अप्रूव करनी है तो आपको सिद्ध करना चाहिए कि आपसे पहले जिसने किया था उसकी क्या गलती है, इसका मतलब आपकी भी गलती होगी। जब हमने सत्य को जान लिया, सत्य का मतलब ध्रुव अचल, सत्य वो है जो बदलता नहीं है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, सत्य जो है वो बदलता नहीं है। और सत्य क्या है? सत्य कृष्ण है, परम सत्य कृष्ण है, जन्मादि अस्य यतः। लेकिन वो जो कृष्ण का तत्व है वो गुह्य है, गुह्य का मतलब ये नहीं कि वो सबके पास है नहीं। भगवद गीता भारत में हजारों एडिशन्स हैं उसके, और भागवत के भी कई लोग कंठस्थ भी कर लेते हैं, लेकिन जब बोलते हैं गुह्य है, गुह्य का अर्थ यह है कि वो बिना भगवान की कृपा के समझ में नहीं आता। आपको संस्कृत श्लोक समझ में आ जाएंगे, आपको हर एक शब्द अनुवाद समझ में आ जाएगा, लेकिन जो उसका सही अंदरूनी अर्थ है, कॉन्फिडेंशियल मीनिंग, वो नहीं समझ में आएगा। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए, वहाँ पर एक ब्राह्मण थे जो भगवद गीता पढ़ रहे थे श्रीरंगम के मंदिर में। वो ब्राह्मण ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनका उच्चारण अच्छा नहीं था, और आसपास के सब लोग देख रहे थे, उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे, जो श्री भगवान रंगनाथ जी के पुजारी थे वो सब विद्वान थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि ये ब्राह्मण मूर्ख है, ये पता नहीं क्या पढ़ रहा है। और श्री चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने पूछा, ब्राह्मण तुम क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, क्या दिखाई पड़ रहा है? तो कहने लगा कि मैं अपने गुरु के आदेश से भगवद गीता पढ़ रहा हूँ, मेरे गुरु जी ने आज्ञा दी है पूरी भगवद गीता पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूँ, और हालांकि मुझे उच्चारण नहीं आता मैं अपने गुरु की आज्ञा पालन कर रहा हूँ। और जब मैं ये पुस्तक खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कृष्ण जो है वो अर्जुन का रथ हांक रहे हैं, और जब मैं इस दृश्य को देखता हूँ कि कैसे भगवान कृष्ण भक्तों के अधीन हो जाते हैं तो मैं उससे मोहित हो जाता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि वही कृष्ण आप हैं, ब्रजेंद्र नंदन आप ही हैं, और बाकी कोई नहीं पहचान पाता। तो ये ब्राह्मण को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप गीता के अधिकारी हैं, आप सच्चे गीता के अधिकारी हैं, क्योंकि आपने गुरु को समर्पण किया है, आपके अंदर भक्ति की भावना। तो ये कृष्ण का तत्व जो गुह्य है वो कैसे समझ में आता है? जब कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। चलो भक्तिधाम ठाकुर कहानी बताते हैं, एक बार एक व्यक्ति जो बहुत अमीर होता है, बहुत धनशाली होता है, वो रात के समय बोलता है कि मुझे अभी सूरज के दर्शन करने हैं, मुझे सूरज देखना है। उसको बताया जाता है कि सूरज को आपको देखना है तो सुबह दिखाई पड़ेगा, बोलता है नहीं मैं अभी देखना चाहता हूँ। तो हैलोजन लैंप्स या जो भी पावरफुल लैंप्स होते हैं वो लेकर छत के ऊपर जाकर पूरा फोकस करते हैं, लेकिन सूरज नहीं दिखाई पड़ता, सवेरे के समय अपने आप सूरज प्रकट हो जाता। ऐसे भगवान के तत्व को भी अपने प्रयास से जानना उसी तरीके से जैसे रात के समय सूरज को देखना है। सूर्य जब प्रकट होता है अपनी इच्छा से तब आप देख सकते हैं, सूरज को भी देख सकते हैं, और सब चीज़ें उनसे संबंधित है उनको भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही जब भगवान कृपा करते हैं तब हम भगवान को समझ सकते हैं। भक्ति का जो तत्व है वो कृपा पर आधारित है। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। कई बार लोग ये अध्याय को ओमिट करते हैं, जो उड़पी में मध्वाचार्य के फॉलोअर्स हैं वो कई बार बोलते हैं ये अध्याय नहीं पढ़ना है, क्योंकि हाउ कैन ब्रह्मा भी बिविल्डर्ड, है ना, ब्रह्मा जी कैसे मोहित हो सकते हैं। लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं कि कृष्ण की इच्छा के अनुसार पूरी सृष्टि कार्य करती है, और भगवान कृष्ण की इच्छा है कि ब्रह्मा जी मोहित हो जाएं, तो ब्रह्मा जी उस रोल को भी स्वीकार करते हैं। जैसे अभी किसी को कहा जाए कि आपको ड्रामा में कंस बनना है, नहीं किसी को पसंद नहीं होगा, लेकिन किसी ना किसी को बनना ही है। तो फिर एक सेवा के रूप में कंस बनना होता थोड़ी देर के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो कंस बन गया है, उसको उसको इस तरह का रोल दिया गया है भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसे ही जो शिव जी मोहित हो जाते हैं मोहिनी मूर्ति को देखकर, या ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं, ये जो उनके विमोहन लीला है वो भी कृष्ण की योजना है हम सबको दिखाने के लिए कि माया बहुत शक्तिशाली है। आपको षड गर्भ की कहानी में बलराम जयंती के दिन बता रहा था कि कैसे जो छह देवकी के पुत्र होते हैं वो पिछले जन्म में ब्रह्मा जी के पौत्र थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे मरीचि, और मरीचि के पुत्र के रूप में ये छह पुत्र थे। और जब ब्रह्मा जी एक बार अपनी पुत्री के प्रति आसक्त हुए तो ये छह जो उनके पौत्र थे, उनके मराठी में नातू बोलते हैं, जिनके ग्रैंडसन थे, वो हंसने लगे। और क्योंकि उन्होंने एक इतने महान व्यक्ति ब्रह्मा जी जैसे के प्रति मजाक की भावना दिखाई, अपराध किया, इसलिए उनका पतन हो गया। उनको शाप मिला कि ये एक असुर परिवार में जन्म लेंगे। तभी उनको शाप मिला कि वे असुर परिवार में जन्म लेंगे और अगले जन्म में वो कालनेमी के पुत्र बने। कालनेमी के पुत्र होने के कारण उनको याद था कि उन्होंने ब्रह्मा जी के प्रति अपराध किया है, इसलिए वो तपस्या करने गए ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन जब वो तपस्या करने गए तो हिरण्यकशिपु वो बहुत क्रोधित हो गए। हिरण्यकशिपु कालनेमी के भी पिता थे, सोचने लगे कि मेरे ही पौत्र होकर मेरी अनुमति के बिना, मेरी इजाज़त लिए बिना, मुझे पूछे बिना ब्रह्मा जी की क्यों पूजा कर रहे हैं। तो इसलिए हिरण्यकशिपु ने क्रोधित में आकर एक और शाप दे दिया कि आपके जो वर्तमान पिता हैं कालनेमी प्रभु, ये अगले जन्म में तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेंगे। तो वही कालनेमी कंस बन जाते, और जो देवकी के जो एक एक करके जो छह पुत्र होते हैं वो षड गर्भ होते, वो षड गर्भ जो है वो ये वही मरीचि के पुत्र थे। और देवकी के गर्भ से निकलने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद वो महाविष्णु के पास होते हैं। और जब भगवान कृष्ण उनको वापस लेकर आते हैं और वो भगवान के महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं, देवकी के स्तनों से दूध आ रहा होता है, ये बड़े उम्र में होने के बाद भी भगवान के प्रसाद के रूप में लेते हैं और उनका उद्धार हो जाता है। तो ये भी एक लीला है कि ब्रह्मा जी मोहित हो जाते, शिव जी मोहित हो जाते। तो जो वैष्णव की क्रिया को, जय राधा कुंज बिहारी की जय, वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञे न भुजाया, वैष्णव की क्रिया को समझना बहुत मुश्किल होता है। हमें नकल नहीं करनी चाहिए और हंसना भी नहीं चाहिए। जैसे कहा गया नित्यानंद प्रभु के बारे में, अगर नित्यानंद प्रभु कोई शराब खाने में भी जा रहे हैं तो हमें तो मुझे विश्वास है कि वो उनका उद्धार करने जा रहे हैं। सूरपान यदि जाए, सूरपान शराब की जगह वहाँ भी जाते। एक बार चैतन्य महाप्रभु जाते हैं ऐसे, श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन कीर्तन करते हुए उनकी इच्छा होती है कि उद्धार करें, तो वो एक शराब के दुकान के पास पहुँच जाते हैं। जैसे वो अंदर जाने लगते हैं तो श्रीवास ठाकुर बोलते हैं, नहीं नहीं आप मत जाओ, क्योंकि आप आदरणीय हो, लोग आपको स्थिति में देखेंगे तो गलत समझेंगे, आप रुक जाओ यहीं पर। चैतन्य महाप्रभु रुक जाते हैं, लेकिन उतने में सारे शराबी बाहर आ जाते हैं। सारे शराबी बाहर आकर गाने लगते हैं, हरे 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 जय सचिनंदन गौर हरे। तरह वो हरि का नाम लेने लगते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु उन सबका उद्धार कर देते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा है, जिस पर कृपा करते हैं उसका उद्धार हो जाता है। तो और भी भागवत में कई उदाहरण हैं, शिव जी पार्वती को अपनी गोद में लेकर बैठ रहे होते हैं, और चित्रकेतु महाराज जब भी शुद्ध भक्त बन गए होते हैं वो वहाँ से गुजरते हैं, वो देखते हैं ये क्या है, श्रीमद् भागवत क्लास हो रहा है और शिवजी ऐसे पोस्चर में बैठे हैं, वो हंसने लग जाते हैं, अब बोलते हैं ठीक नहीं है। तब पार्वती देवी उनको शाप दे देती हैं कि आपने इस तरह से मेरे पति के बारे में ऐसे बुरे शब्द बोले, इसलिए मैं शाप देती हूँ कि आप असुर बन जाओ। तो प्रभुपाद उस छठे स्कंद के परपोट में बताते हैं कि चित्रकेतु को नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, क्योंकि शिवजी इतने बड़े महाजन हैं, इतने वैष्णव हैं, वो जो भी करें चित्रकेतु महाराज को नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, उनके लिए ठीक नहीं था ऐसा बोलना। लेकिन फिर दूसरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि वास्तव में चित्रकेतु जो है उनके हित के लिए बोल रहे थे। तो दोनों चीज़ें सही हैं, लेकिन फिर भी वैष्णव को ऐसी स्थिति में शांत रहना जरूरी है। वैष्णवों के बीच में भी गलत फहमियाँ बहुत होती हैं, शास्त्रों में है। दक्ष और नारद मुनि टिपिकल एग्जाम्पल है। नारद मुनि सन्यासी ब्रह्मचारी हैं, वो घूमते रहते हैं, और दक्ष एक्सपर्ट हैं भक्तों की संख्या बढ़ाने में। तो एक बार जब दक्ष को भगवान ब्रह्मा जी का आदेश मिलता है, एक्चुअली ये दक्ष जो है ये दूसरे दक्ष हैं, पहले एक दक्ष थे जो शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, इसलिए बकरी का आपने कहानी सुनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अपराध किए थे, शिव जी उनका सिर काट दिया, कभी रोने लगे नहीं सिर चाहिए, तो कोई नहीं, तो जो बकरी मिल गई बकरी का सिर लगा दिया। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यू नो, तो बकरी के सिर से का। लेकिन बाद में उनको बहुत पश्चाताप हुआ कि ये बकरी का शरीर लेके मैं कोई मीटिंग में जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे, यू नो, वो भी मैं लीडर हूँ यानी प्रेसिडेंट जैसे हूँ, यू नो, इसलिए उन्होंने वो देह त्याग दिया। और वो देह त्यागने के बाद में वो अगले जन्म में फिर से, उनका नाम फिर से दक्ष था, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट टाइप के दक्ष थे। तो ब्रह्मा जी के आदेश से उन्होंने संतान उत्पत्ति की, मनु के ही परिवार से एक पुत्री के साथ शादी करा के, और विवाह से उनके 10,000 पुत्र हुए, हरियाश्व बोले थे, 10,000 पुत्र हुए। तो उनको सबको उन्होंने आदेश दिया कि अब जाओ तपस्या करो, जैसे हम बच्चों को बोलते जाओ स्कूल में जाओ डिग्री प्राप्त करो, और फिर यहाँ पर वापस आकर हमारी सेवा में लगो। उन्होंने बोला कि आप जाओ और बाद में वो घर में वापस आ जाना, मतलब घर में आके हम जो हम कर रहे हैं वो करते रहना, पुनश पुनश चर्वित चर्वनानम, आप भी वही चीज़ करना। तो वह गए 10,000, और रास्ते में नारद मुनि मिल गए, वन टाइम प्रोग्राम। नारद मुनि 6 डे भी नहीं करते, नारद मुनि इसमें एक्सपर्ट। नारद मुनि बोले अरे आपने इतनी तपस्या की, आपने इतनी भक्ति की, अभी थोड़ी सी और कर लो, वापस जाने की क्या जरूरत है, थोड़ी सी और करो, आप गोलोक वृंदावन जा सकते हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, और भक्ति की उन्होंने, और वो लिबरेट हो गए, मुक्त हो गए। दक्ष भी वेट कर रहे हैं, अरे 4 साल बीत गए, बीटेक हो गया, मेरा पुत्र वापस नहीं आया। क्या हो गया है ना। तब उनको दुख समाचार मिला कि मेरा बेटा जो है वो नारद मुनि के जाल में फंस गया। मैं गया एक बार कुरुक्षेत्र में मैं जब पढ़ता था, तो मैं एक फैमिली थे जो जिनके कई भक्त हैं, जिनके परिवार में बहुत सारे भक्त हैं, उनके स्वयं के 3 पुत्र थे, और मैंने कई बार बताई ये कहानी से, तो इंट्रोड्यूस करा रहे थे कि हमारे एक पुत्र हैं, देखो ये जो है अमेरिका से मेडिसिन साइंस पढ़ के आए हैं, दूसरे मेरे इंजीनियर हैं जो टाटा में सर्विस कर रहे हैं, बहुत हाई पोस्ट पे हैं, और तीसरे पुत्र ब्रह्मचारी हैं। गला कि ये बहुत मतलब अनफॉर्चुनेट से। तब उनको बहुत बुरा लगा दक्ष को, फिर भी उन्होंने सोचा कि मुझे सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली दक्ष भी वैष्णव है। आप सोचो दक्ष कितने पावरफुल वैष्णव है कि उन्होंने यज्ञ किया और भगवान विष्णु खुद आए। आप में से कौन है जो यज्ञ करते हैं भगवान विष्णु स्वयं आए? हम लोग रोज़ हरिनाम यज्ञ करते हैं, लेकिन ऑफकोर्स कुछ लोग जागते रहते हैं, लेकिन ये ना फिर भी हमको भगवान की इतनी, वी आर नॉट ऑन दैट लेवल दैट वी कैन सी कृष्णा इन द नेम इन द फॉर्म ऑफ हिज नेम, हम वी आर नॉट ऑन दैट लेवल। दक्ष कितने एडवांस थे, इसलिए उनका मजाक नहीं कर रहा, मैं खाली बता रहा हूँ कि कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कितनी गलत फहमी हो सकती है, जैसे मराठी में गैर समझ बोलते हैं उसका। तो दक्ष बहुत बहुत गुस्से हुए, लेकिन शांत हुए, और उन्होंने अपनी जो पावर्स थे उसका उपयोग किया, फिर से नेक्स्ट सेट, उनके जो 1000s में होता था उनके संतनी, तो 1000 और पुत्र हुए, उनका नाम था नारायण अश्व है ना, शवलाश्व भी गए, उनको भी बोला तपस्या करो बिंदु सरोवर के पास, और तपस्या करके लौट कर आओ। जब वो लौट कर आ रहे थे फिर से उनको नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि बोले कि देखो तुम्हारे भाइयों ने जो किया वही आपको करना चाहिए, महाजन ये न गत सतंत, अभी इतनी भक्ति कर ली अभी थोड़े से, क्यों आप घर में जाओगे और उस फैमिली लाइफ परिवार जीवन के एंटेंगलमेंट जाओगे, ठीक नहीं। तो वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब कोई व्यक्ति निर्दोष होता है उसको प्रीचिंग करना बहुत आसान होता है, जैसे जब कोई व्यक्ति ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, कॉम्प्लिकेटेड माइंड नहीं है, उसको बताना बहुत आसान होता है कि देखो ये जीवन दुखालय है, किसा कोई सुखी नहीं हुआ है, तुम्हारे दादाजी सुखी नहीं हुए, तुम्हारे पिताजी सुखी नहीं हुए, तुम कैसे सुखी होगे, ईजी होता है। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसके यू नो परिवार और ये सब चीज़ों के द्वारा उसका उसके उसको भौतिक विचार दिए जाते हैं, तब उसको बदलना मुश्किल होता है। पेड़ जब छोटा होता है तो उसको मोड़ना आसान होता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। तो नारद मुनि के कहने पे वो भी भक्त बन जाते हैं, वो भी फुल टाइम भगवान की सेवा करके भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। और इस बार प्रजापति दक्ष बहुत गुस्से हो जाते हैं, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। वो नारद मुनि को बुला के बहुत बुरे शब्द बोलने लगते हैं, या भागवत में बोला ही नहीं जाना चाहिए वो शब्द, लेकिन वो श्लोक में आते इसलिए बोला है, यू आर रास्कल, आ बदमाश हो, हाँ ढोंगी हो, ढोंगी, भगवे कपड़े पहने हो, साधु के वेश में हो, मेरे को देखो मैं असली भक्त हूँ, मैं परिवार में रहकर भक्ति कर रहा हूँ, देखो क्या तुम समझते नहीं हो। ये बात जो सही है कि जब तक कोई व्यक्ति, ये अच्छा है कि वैराग्य होना चाहिए, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति इंद्र तृप्ति करता नहीं है तब तक वो वैराग्य कैसे बन सकता है। कुछ कुछ सिमिलर फिलोसफी है जो जो भारतवर्ष में एक मूर्ख व्यक्ति प्रचार कर रहे थे ना, कि अगर आपको अग्नि को बुझाना है तो उसमें इतना घी डाल देना चाहिए कि वो घी के लोट से अग्नि बुझ जाएगी, लेकिन पहली बात है उतना घी मिलेगा ही नहीं, और मिला भी तो बाद में अग्नि और बढ़ जाएगी, थोड़ी देर के लिए बुझेगी और फिर बढ़ जाएगी। ये कोई तरीका नहीं अग्नि को बुझाने का कि घी डालते जाओ अग्नि बुझ जाएगी। नारद मुनि को बहुत डांटने लगते हैं कि आपने मेरे बच्चों का जीवन खराब कर दिया, आप क्या समझते हो अपने आप को, साधु को ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरों का कल्याण करना चाहिए, और आप इस तरह से हमको गलत गलत दिशा दिखा दी हमारे बच्चों को। वैराग्य अच्छी चीज़ है, लेकिन ये चार आश्रम बनाए गए हैं, पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, संन्यास, आपने मेरे पुत्र को सीधे सन्यासी बना दिया। बहुत, अरे मैं तो हंसते हंसते बोल रहा हूँ लेकिन वो बहुत गुस्से में बोल रही थी, बस फ्यूमिंग, उनकी आंखें लाल थी। नारद मुनि खड़े हुए थे, नारद मुनि कुछ नहीं बोले, और अंत में प्रजापति दक्ष ने उनको शाप दे दिया कि आप एक स्थान पर नहीं रह सकते, अब आपको घूमते ही रहना पड़ेगा। तो नारद मुनि खड़े रहे, और विश्वनाथ ठाकुर टीका करते हैं क्यों खड़े रहे, कि नारद मुनि सोच रहे थे अगर मैं भी इसको बदले में कुछ बोलूँगा ये भी गुस्से हो जाएगा तो मैं शांत रहूँगा, और इसका जब गुस्सा कम हो जाएगा तब इसको भी मैं उद्धार करूँगा, इस पर भी कृपा दिखाऊँ। तो नारद मुनि बदले में बोल सकते थे उनको कि तुम मेरे को, आप मेरे को बोल रहे हो कि आप एक स्थान पे नहीं रहोगे, मैं अभी तुमको शाप देता हूँ तुम्हें शरीर में ही नहीं रहोगे। पहले इसका शिवजी ने इसका एक सिर काट दिया था। नारद मुनि शिवजी से कम नहीं है यू नो स्पिरिचुअल पावर्स में, 12 महाजन में से नारद मुनि भी हैं, शिवजी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, दक्ष नहीं है। लेकिन नारद मुनि खड़े रहे। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा था कि जो महान व्यक्ति होते हैं उनके बिहेवियर को समझना मुश्किल होता है, कि नारद मुनि ऐसे महान व्यक्ति हैं, और नारद मुनि कंस को भी प्रीचिंग करते हैं, ऐसे नहीं कि नारद मुनि कंस को बोल रहे हैं कि आप ब्रह्मचारी बन जाओ, नहीं, वो देखते हैं स्थिति को, कंस तो बदमाश है ही, गया काम से, तो उसको ऐसे ऐसी सेवा देते हैं जल्दी मरे वो, जल्दी मरे, जल्दी उसके पाप बढ़े, उसका उद्धार हो जाए। जब प्रभुपाद जी फेमस कहानी बताते हैं कि एक साधु जा रहे होते हैं और वो चार लोगों से मिलते हैं और चार अलग अलग आशीर्वाद देते, उनके शिष्य उनके साथ में होते हैं, एक राजपुत्र को देखकर बोलते हैं कि राजपुत्र जीवोवा, हाँ चिरंजीव हो, आपकी लंबी आयु हो, और फिर उसके बाद एक नेक्स्ट कौन होते हैं, कसाई, एक कसाई को देखते हैं, उसके बाद ब्रह्मचारी को देखते हैं, ब्रह्मचारी को देखते हैं वो बहुत तपस्या कर रहा होता है, जमीन पे सोना, राधा कुंजबेरी मंदिर में तो जमीन भी नहीं मिलती सोने के लिए, जमीन में सोना नहीं तो कुटिया में सोना, या तो बहुत तपस्या, और तो उसको श्राप देते हैं कि मर जाओ, जल्दी मर जाओ, माँ जीव अब जल्दी मर जाओ। और फिर वो एक कसाई को देखते हैं जो बहुत क्रूर जीवन बिता रहा होता है, जानवरों की हत्या कर रहा होता है, उसको उसको शाप देते हैं कि आप न मरो भी नहीं और जियो भी नहीं। और अंत में एक वैष्णव को देखते हैं, उनको वो देखते हैं, वो भगवान के नाम में मग्न हैं, तो बोलते हैं कि आप जीवो वा मरो वा, जीवित रहो या मरो, दोनों ही सही है। तो उनके शिष्य पूछते हैं, गुरुजी आपने क्या अलग अलग आशीर्वाद दिया है, क्यों अलग अलग आशीर्वाद दिया है? तो गुरुजी बताते हैं कि जो पहला व्यक्ति था जो कि राजपुत्र था, वो इतनी इंद्र तृप्ति कर रहा है और अब ये सब इंद्र तृप्ति के कारण उसको नरक जाना पड़े, क्योंकि इंद्र तृप्ति का मतलब पाप हो ही जाते हैं उसमें, स्पेशली अगर कोई व्यक्ति मांस भक्षण कर रहा है या शराब पी रहा है तो ये सब पाप है। इसके बाद इसकी गति बहुत बुरी है, इसलिए मैंने आशीर्वाद दिया है कि वो लंबी आयु मिले, जितना वो जीवित रहेगा उतना ही अच्छा है, बस मरने के बाद तो उसको दुख भोगना पड़े। और जो ब्रह्मचारी इतनी तपस्या कर रहे, इतने जितनी देर वो जीवित रहेंगे उतना उनको कष्ट होगा, लेकिन मरने के बाद उनको भगवान की प्राप्ति होगी, इसलिए मैंने श्राप दिया कि वो जल्दी मर जाए। आपको थोड़ा एडिटिंग करना चाहिए, हमें प्रीचिंग के लिए थोड़े साल और प्रीचिंग होनी चाहिए, इसलिए भक्त को जीवित रहना चाहिए। हम और तीसरा व्यक्ति जो है, चौथा व्यक्ति जो है, जो प्रचार कर रहे हैं भगवान के, जो कसाई, सर कसाई का बताया मैंने, कसाई का बताया, इसको बाद में भी बुरा है अभी भी बुरा है। और लास्ट है जो वैष्णव जो प्रचार कर रहे हैं, वो तो अभी भी हरि नाम ले रहे हैं और मृत्यु के बाद भी जहाँ भी जाएंगे वो गाएंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहाँ भी वैष्णव जाए उनको तो कोई डर नहीं है। नारायण परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यत, स्वर्ग पवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। जो वैष्णव है उसके लिए इक्वल दृष्टि है, जिसे स्वर्ग और नरक में कोई अंतर नहीं है, स्वर्ग और नरक में कोई अंतर नहीं है, सब चेतना का सवाल है। और आपकी चेतना वृंदावन में है तो आप नरक में भी वृंदावन देख सकते हैं, आपकी चेतना शुद्ध नहीं है तो आप राधा कुंज बिहारी मंदिर में भी बैठे हैं तो आप वास्तव में वृंदावन में नहीं हैं। सब कुछ चेतना पर आधारित है। वृंदावन वो स्थान है जहाँ पर हर व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, वो वृंदावन है। वृंदावन वो स्थान है जहाँ पर हर व्यक्ति सोच रहा है कि कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, यहाँ पर कृष्ण सेंटर है, वो वृंदावन। प्रभुपाद एक बार न्यूयॉर्क में मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे और किसी एक व्यक्ति ने वहाँ से कुछ गंदे इलाके से निकल गए, जो जो जैसे कई लोग यहाँ पर गंदे कार्य करते, तो प्रभुपाद से सब शिष्य माफ़ी मांगने लगे कि प्रभुपाद हम क्षमा चाहते हैं। प्रभुपाद जी बोले, नो इफ यू हैड आईज टू सी यू वुड सी इट इज़ वैकुंठ, आपका दृष्टि होती तो आप उसको वैकुंठ देख सकते। भक्त शुद्ध भक्त को सब जगह वैकुंठ दिखते, सब जगह कृष्ण दिखते। सावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र है इष्ट देव स्फूर्ति। जो वैष्णव है वो कोई भी चीज़ देख रहे हैं, जड़ पदार्थ को या अचर पदार्थ को, वो यही देख रहे हैं कि कृष्ण है, सब जगह कृष्ण देख रहे हैं, कृष्ण उनको अपने प्राणनाथ कृष्ण दिखते हैं। तो ये वैष्णव है, वैष्णव मतलब हर समय कृष्ण देख रहे हैं और इस तरह से वो हर समय कृष्ण के संपर्क में रह सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वैष्णव कितनी तीव्र इच्छा होती है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, इसलिए वृंदावन को सब जगह पर देखते हैं। भौतिक संसार से कोई संबंध नहीं। प्रभुपाद, मैंने कई बार एक कहानी बताई है कि प्रभुपाद एक बार जा रहे थे भक्तों के साथ मॉर्निंग वॉक पे और वहाँ पर एक कचरे का डिब्बा पड़ा था, इंग्लिश में बोलते हैं ना यूज़ मी, कचरा इसमें डाल दो, तो प्रभुपाद जी बोले पूरे भौतिक जगत को इसी में डाल देना चाहिए, ऑल मटेरियल वर्ल्ड इज़ यूजलेस। भक्त को यह दृष्टि होती है मुझे भौतिक दुनिया से कुछ लेना है, एट द बेस्ट मेक अ गुड यूज ऑफ अ बैड बार्गेन, बस मुझे इस दुनिया में मैं आ गया हूँ, बस मुझे बाहर निकलना है, बाई टेकिंग शेल्टर ऑफ द होली नेम। और अंत में एक और पॉइंट जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं भगवान की सर्व अंगता के बारे में, कि भगवान की सब जो इंद्रियाँ हैं वो दूसरे इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं। भगवान अपने हाथ से भी देख सकते हैं, अपने पैरों से भी खा सकते हैं और अपने नाक से भी बोल सकते हैं। बाइबल में ऐसे कहानी आती है, गॉड अपियर्ड इन द फॉर्म ऑफ बर्निंग बुश, सुना आप लोगों ने, एक जलती हुई झाड़ी के रूप में भगवान प्रकट होते हैं मोसेस को। मोसेस एक बहुत बड़े वैष्णव ही थे, अल्टीमेटली सभी वैष्णव हैं लेकिन अलग अलग लेवल पे। जैसे कोई स्कूल टीचर है, कोई प्राइमरी टीचर है, और कोई कोई टीचर का काम है खाली बच्चों को बिठाना क्लास में, छोटे बच्चे को बिठाना भी क्लास है। तो जो 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 क्रिश्चियन इस्लाम जो फेथ्स हैं उसमें ज्ञान ऐसे बेसिक दिया गया, कम से कम लोगों को सिखाना कि धर्म है, भगवान है, स्वरूप क्या है वो हमको मालूम नहीं है लेकिन एक है, एक ओंकार सतनाम कुछ है, थोड़ा ज्ञान देना, तो बेसिक बेसिक ज्ञान देना। तो मोसेस को ऐसे प्रकट हुए भगवान, और उसमें से एक आवाज़ सुनाई पड़ी उसको बर्निंग बुश से कि आप कि कमांडमेंट्स सब सुनाई पड़े, जो कि 10 कमांडमेंट्स हैं। इस पर जीसस क्राइस्ट ने फिर और आगे ज्ञान दिया उसके बाद। तो भगवान कहीं से भी बोल सकते हैं, भगवान कहीं से भी बोल सकते हैं, और भगवान की इंद्रियां जो हैं वो सर्वव्यापी हैं, सब जगह पर हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं लॉर्ड कैन सी थ्रू जीवस आईज ऑल्सो, भगवान किसी जीव की आंखों से भी देख सकते हैं, भगवान सब जगह देख रहे हैं, इसलिए उनको सर्वव्यापी कहा जाता है। तो मैं सोच रहा था कि अगर मुझे ये पता है कि कृष्ण मुझे देख रहे हैं तो मेरा व्यवहार कैसा होगा। इससे आपको, अगर आप जिस व्यक्ति का सबसे ज़्यादा आदर करते हैं, आपके गुरुदेव या शिल प्रभुपाद, आप कोई क्रिया कर रहे हैं और आपको पता है वो सामने बैठे हैं, तो आपका व्यवहार कितना बदल जाता है। जैसे शुद्ध भक्त जो है वो जानता है कि कृष्ण मुझे हमेशा देख रहे हैं। कृष्ण भावना का मतलब हर समय ये भावना रखना कि कृष्ण क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कृष्ण 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 को कैसे मैं प्रसन्न करूँ। जैसे हम ऑल्टर के सामने होते हैं, डीटीज के सामने, तो हमारा व्यवहार बहुत ही सतर्क रहता है। हम जानते हैं कि कृष्ण भी देख रहे हैं, कृष्ण के कमरे में। तो एक शुद्ध भक्त है वो हर समय ऐसा व्यवहार करता है कि कृष्ण मेरे को देख रहे हैं, मुझे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। ये इंद्रियों के बारे में एक और सुंदर कहानी है चैतन्य चरितामृत में, मुकुंद और रघुनंदन के। मुकुंद पिता होते हैं और रघुनंदन उनके पुत्र होते हैं, और मुकुंद पिता पुत्र को बोलते हैं रघुनंदन मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, आप गोपीनाथ को लड्डू अर्पण करो। और जब रघुनंदन ऑफरिंग करते हैं, और तब देखते हैं ऑफरिंग करने के बाद भी वो प्लेट में लड्डू अभी भी हैं, तब रघुनंदन भगवान से निवेदन करते हैं कि आप स्वीकार करो। भगवान बोलते हैं मैंने स्वीकार कर लिया। तो नहीं, आप स्वीकार करो, मैंने, भगवान बोलते हैं मैंने आँखों से खा लिया। रघुनंदन बोलते हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आँखों से क्या खाना है, आप मेरी मेरी आप ऐसे खाओ कि मुझे भी पता चले खाया है। और भगवान वो लड्डू खा लेते हैं। मुकुंद लौट कर आने के बाद रघुनंदन से पूछते हैं कि रघुनंदन आपने ऑफरिंग किया, महाप्रसाद कहाँ है? बोले महाप्रसाद भगवान कृष्ण ने पूरा खा लिया, 100% हमारे केस में 100% वापस आते हैं, 100% सब खा लिया। तो नहीं, आपने खाया या कृष्ण ने खाया पता नहीं, आप फिर से ऑफरिंग करो। और भगवान फिर से स्वीकार करते हैं उसकी प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। साक्षी गोपाल की भी कहानी है कि भगवान चल के आते हैं वृंदावन से लेकर विद्यानगर तक। जब भगवान को वो ब्राह्मण बोलते हैं आप चलो चलो, तो ब्राह्मण बोलते हैं नहीं मैं मूर्ति हूँ, मैं चलता नहीं हूँ। तो बोलते हैं भगवान मूर्ति तो बोलते भी नहीं, आप बोल सकते हो तो आप चल भी सकते हो। तो भगवान की इंद्रियाँ इस तरह, और सब इंद्रियों से सब कुछ कर सकते। कुछ लोग रहते हैं कहते हैं कि भगवान का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, लेकिन ये बहुत खतरनाक फिलॉसफी है, डेंजरस है, ये नास्तिक से भी बुरा है। नास्तिक तो बोलते हैं भगवान है ही नहीं, चलो कम से कम वो अपराध नहीं करते, आउट ऑफ पिक्चर, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। लेकिन ये जो मायावादी हैं वो बोलते हैं भगवान हैं लेकिन उनका रूप नहीं है, आँख नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि आपका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, मुँह नहीं है, तो कितना बुरा लगेगा, इट्स लाइक कटिंग ऑफ अंग। मायावादी कृष्ण अपराधी। चैतन्य महाप्रभु एक दिन मुरारी गुप्ता के घर में आए और बहुत गंभीरता से बोले गए, वो एक सन्यासी है प्रकाशचंद्र सरस्वती, वो वाराणसी में रहता है, वो कहता है कि मेरा कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो नहीं जानता, लेकिन उसके शरीर में लेप्रसी है, उसके शरीर में कोढ़ है। महाप्रभु बहुत गुस्से थे मायावादियों को सुनकर, और बाद में चैतन्य महाप्रभु ने उसका उद्धार कर दिया। क्यों उद्धार किया? क्योंकि एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे, महाराष्ट्र की जय हो कि एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, राइट, महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे जिन्होंने मीटिंग अरेंज किया प्रकाशचंद्र सरस्वती और उनके बीच में। प्रकाशचंद्र सरस्वती अपने पूरे गैंग के साथ बैठे हुए थे, अपराधियों के साथ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए और दरवाजे के पास खड़े रहे जहाँ पैरों को धोया जाता है। तब उन्होंने हाथ जोड़ के उनका निवेदन किया, प्लीज़ आप आइए, उनको अंदर बिठाया। और ये अज्ञात सुकृति होगी, शायद उसने कभी त्रिणादपि सुनिचंद सुना भी नहीं होगा पहले श्लोक, लेकिन उसने एक सेवा की और धीरे धीरे महाप्रभु ने उनको वैष्णव बना दिया। तो ये फिलॉसफी से बहुत सावधान रहना चाहिए कि भगवान का हाथ नहीं है, पैर नहीं है। ये जानते भारत में आर्य समाज एक संस्था है, वो भी ऐसे ही बोलते भगवान का कोई रूप नहीं है, ये काल्पनिक रूप है, आप काल्पनिक रूप की पूजा करो और फिर आप जान लोगे कि आप वही हो, आप वही हो। नहीं, हम कृष्ण के दास हैं, हमेशा दास रहेंगे, दासों के दास रहेंगे। तो कोई प्रश्न है किसी का, कमेंट्स? यस शंभुनाथ प्रभु, एक साधु है, नाम नहीं बताए, एक साधु। कोई प्रश्न है किसी को? प्रजापति दक्ष के पास टाइम में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दक्ष ने शाप दिया नारद मुनि को, यह सोच के कि उसके लिए बुरा होगा, नहीं किसी को बोलेंगे कि आप कोई घर में नहीं रह सकोगे, घूमते रहोगे, लेकिन वो एक्चुअली वरदान हो गया, क्योंकि शाप अल्टीमेटली किसने दिया है, सब शाप कहाँ से आते हैं, वरदान कहाँ से आते हैं, सब कृष्ण से आते हैं। तो कृष्ण सोच रहे थे कि नारद मुनि जो है वो अभी यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण की इच्छा थी कि नारद मुनि और ज़्यादा प्रचार करें, इसलिए भगवान कृष्ण ने ये प्लान किया, तो नारद मुनि की सेवा और बढ़ गई। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे है, मैंने भी कई पाश्चात्य देश के भक्तों को भक्त बना दिए, ब्रह्मचारी, और माता पिता को छोड़ के आ गए, उनके माता पिता का शाप मुझे लग गया और इसलिए मैं हालांकि लॉस एंजलिस में और सब सेंटर्स में मेरे लिए अलग कमरा रखा है कम्फर्टेबल्स, लेकिन मैं एक स्थान पर रुक नहीं पाता कुछ दिनों से ज़्यादा, लेकिन अब एक इमरजेंसी आई, अब मेरी इच्छा, मैं भागवत का अनुवाद पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने शिष्यों से और शिष्यों के शिष्यों से निवेदन करता हूँ कि वो ये शाप को स्वीकार कर लें, जिससे कि मैं एक स्थान पर रह सकूँ। जैसे जैसे कि पिताजी का लोन होता है, कोई पुत्र पे कर देता है ऐसे, तो शाप को स्वीकार करने के लिए तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम लोग उस शाप को स्वीकार करें, जिससे हम भी कृष्ण का नाम प्रचार कर सकें। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।